मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज सप्ताह का आखिरी दिन नहीं है, आज वर्ष का आखिरी दिन है 31 दिसंबर और वर्ष है 2014। आज वर्ष 2014 के इस अंतिम दिन मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, जिन्होंने मार्च 2015 में लगने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन दोस्तों के नाम हैं सुमित कुमार सिंह, आप सुपौल जिला से हैं, बिहार से। अशोक कुशवाहा, आप बैतूल / टीकमगढ़ लिखा हुआ है, पता नहीं दोनों जगह के नाम कैसे लिखे हुए हैं। और तीसरे दोस्त हैं अभिषेक मिश्रा, आपके लिए भी दो स्थानों के नाम लिखे हुए हैं, इलाहाबाद / राजकोट। सुमित, अशोक और अभिषेक, आप तीनों साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों 2014 का साल खत्म होने के करीब है, हम लोग अब एक साल बाद मिलेंगे। एक विचित्र सी स्थिति होती है, इसी साल को जो बीत रहा है और उस साल को जो आ रहा है, हमारे सोचने के समझने के बड़े दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, होते ही हैं। एक तरीका है भावनात्मक और दूसरा तरीका है तार्किक। भावनात्मक तरीके के अंतर्गत आप देखते हैं कि जब कोई भी हमसे विदा होता है, हमसे बिछुड़ता है, तो दिल भर आता है, आंखें डबडबाने लगती हैं, आवाज भर्राने से लगती है और बिन कहे ही आप सब कुछ कह देते हैं, मानो कि बेटी की विदाई हो रही हो। लेकिन दोस्तों ये जो बेटी की विदाई है ये बड़ी विचित्र सी चीज है, बहुत ही अद्भुत चीज है। अद्भुत इस मायने में कि एक ही समय में दो परिवार बिल्कुल दो अलग अलग भावनाओं से संचालित होते रहते हैं। एक घर से बेटी विदा हो रही है, सबकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन यही बेटी विदा होकर के जिस घर में बहू बनकर के जा रही है, वहां प्रतीक्षा हो रही है उस बहू के आने की, और उत्साह से लोग पलक पांवड़े बिछाए उसी बेटी का जो यहां बहू बनकर आएगी इंतजार कर रहे हैं। ये इस घर में उत्साह है, उल्लास है, उमंग है। अब आप देख रहे हैं कि जब पुराना साल बीत रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बेटी विदा हो रही हो, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वो बहू भी बनेगी। और 2015 का साल, जब कल का सूरज निकलेगा तो वह 2015 का पहला सूरज होगा और निश्चित रूप से वह हमारे अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग और नया जोश भी पैदा करेगा। मित्रों जब हम नए साल को पूरे उत्साह के साथ आमंत्रित करते हैं, उसके लिए प्रतीक्षारत रहते हैं, उसको अपने आगोश में भरते हैं, इसका मतलब है कि हम जीवन को तार्किक रूप में स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जीवन का सत्य यही है। लेकिन मित्रों मुझे ये भी लगता है कि क्या हम इस जीवन के इस छोटे से सत्य को क्या संपूर्ण जीवन के सत्य में तब्दील नहीं कर सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें बेटी की विदाई का कोई दुख ही न हो? हो सकता है। कल पता नहीं क्यों रात में हम लोग कल पीके फिल्म देख करके आए, बड़ी खूबसूरत फिल्म है दोस्तों, कभी मैं इस पर चर्चा करूंगा और मैं चर्चा करूंगा ही, कभी क्या बहुत जल्दी चर्चा करूंगा। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही गजब की फिल्म है और मैं इसको तो बड़े अलग एंगल से लिखने की भी सोच रहा हूं, और जब मैं लिख लूंगा और अगर वो छपेगा तो मैं आप लोगों के पास भेजूंगा भी। रात में जब हम लोग बातें कर रहे थे फिल्म देख कर आने के बाद, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही एक ख्याल आया, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है कि अगर जिंदगी में आदमी अपने मकसद को पाले तो शायद उसके मन से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, फिर उसे लगता नहीं कि मृत्यु आ जाएगी तो क्या होगा, लगता है कि ठीक है वो भी तो होना ही है। तो मेरी पत्नी ने इसको बिल्कुल स्वीकार किया कि हाँ, अगर हम अपने मकसद को पा लेते हैं, अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जी लेते हैं, तो मृत्यु में इतनी ताकत नहीं होती कि वो हमें डरा दे, बल्कि कभी न कभी वो हमें रोचक ही लगती है कि एक नई शुरुआत वहां से हम करते हैं, मृत्यु एक नए की शुरुआत करने का एक प्रस्थान बिंदु भी होता है। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगता है कि अगर 2014 का हमने सही इस्तेमाल किया है, अच्छी तरह इस्तेमाल किया है, तो इसके बीत जाने का दुख नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि यही इसकी एक तार्किक समीक्षा भी है। मैंने बताया कि दो तरीके से हम सोच सकते हैं। एक, 2014 जो बीत रहा है हमारे अंदर एक अफसोस पैदा कर रहा है, अगर हम कुछ नहीं कर पाए हैं तो हमारे अंदर एक अपराध बोध भी पैदा कर रहा है। लेकिन यदि हमने इसका इस्तेमाल किया है तो हम उससे बड़े हाथ हिलाकर टाय टाय बाय बाय करेंगे, टाटा बाय बाय, ओके अलविदा 2014 दस्तदानिया, फिर मिलेंगे 2015 में, तुम ही 2015 में रूप बदल कर आओगे, वक्त वही होगा, मौसम वही होंगे, लोग वही होंगे, जगह वही होगी, हम भी वही होंगे, कैलेंडर की तारीखें वही होंगी, वर्ष बदल जाएंगे और कैलेंडरों के चित्र बदले हुए होंगे, बाकी तो सब कुछ वही होगा। जिन दीवारों पर हम कैलेंडर लगाएंगे वे दीवारें भी वही होंगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 2014 ही तो अपना रूप बदलकर 2015 के रूप में हमारे सामने उपस्थित होगा? ये इसका एक तार्किक आधार है। तो मित्रों, खासकर मैं अपने प्यारे साथियों से जो मेरे इस ऑडियो गाइडेंस से जुड़े हुए हैं, जो कहीं भी ये मानते हैं कि इस ऑडियो गाइडेंस का उनके जीवन में थोड़ा सा ही सही, बहुत ही मामूली सा ही सही कोई रोल है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब जबकि 2014 खत्म होने को है और 2015 आने को है, मुझे नहीं मालूम कि 2014 में आपने क्या पाया है, क्या खोया है, उसे किस तरीके से आपने बिताया है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा दोस्तों कि जब 2015 कल आएगा, आपकी आंख खुलेगी, या हो सकता है कि खुली हुई आंखों से ही आप 2015 की सुबह का स्वागत करें, तब आप ये संकल्प लेंगे कि मैं जिस दिन अब ये 2015 का 31 दिसंबर आएगा इसे बड़े हंसी खुशी के साथ विदा करूंगा कि 2015 तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, शायद उससे भी अधिक जितने मैं तुमसे उम्मीद कर रहा था। और ऐसा आप कर सकते हैं दोस्तों, किया ही जाना चाहिए। आज भोपाल का मौसम काफी खराब तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई मौसम खराब नहीं होता है, लेकिन काफी ठंड है, बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं, और आपको मालूम है कि ठंड के दिनों में अगर बादल छा जाएं और बारिश हो जाए तो वो चुभने वाली ठंड हो जाती है। सुबह जब मेरी आंख खुली अर्ली मॉर्निंग, तो मैंने देखा कि जमीन पर पानी इकट्ठा हो गया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये पानी इकट्ठा कैसे हुआ, क्या इतनी ज्यादा बारिश हुई कि ये पानी इकट्ठा हो गया है? जो हमारा लॉन है उसका बहुत बड़े हिस्से में तो ग्रास है, घास लगी हुई है, लेकिन थोड़े से हिस्से में हमने उसको सीमेंटेड भी करा रखा है, वो थोड़ा सा हिस्सा पक्का है, तो पक्के वाले हिस्से में जो थोड़ा सा एक तरह से गड्ढा नुमा सा है, थोड़ा सा वहां पानी इकट्ठा हो गया था, लेकिन जब मैंने घास वाले हिस्से में देखा तो घास इतनी भीगी नहीं थी, वहां की मिट्टी इतनी गीली नहीं थी। तो मेरे दिमाग में बात आई कि यार जब पानी इतना ज्यादा नहीं गिरा है कि यहां की मिट्टी गीली हो जाए घास की, तो यहां ये पानी इकट्ठा कैसे हो गया? तो मेरे दिमाग में तुरंत एक भाव कौन था दोस्तों, एक विचार आया। मैंने कहा कि यहां जो ये जो पक्की जमीन पर ये जो पानी इकट्ठा हुआ है, ये इसलिए इकट्ठा नहीं हुआ है कि पानी ज्यादा गिरा है, ये इसलिए इकट्ठा हुआ है क्योंकि इस जमीन के ग्रहण करने की शक्ति खत्म हो गई है, बहुत कम हो गई है, मिनिमाइज हो गई है। क्यों हो गई है? ठंड के दिनों में तपन खत्म हो गई है, जमीन को जो तपना चाहिए, जो साधना करनी चाहिए ग्रहण करने के लिए, रिसेप्टिविटी के लिए, अभी तो ये जमीन साधना कर ही नहीं रही है। अक्टूबर के बाद से या नवंबर के बाद से जमीन एक तरह से बहुत मॉडरेट सूरज की तपन में रह रही है, बहुत आराम से रह रही है, वो तप ही नहीं रही है। और जब तप नहीं रही है तो उसके अंदर ग्रहण करने की ताकत आएगी कहां से, सोखने की ताकत आएगी कहां से? जमीन का ये टुकड़ा सोखने की अपनी ताकत से चूक गया है, और अगर चूक गया है तो ये पानी समाएगा कहां से? बारिश तो थोड़ी सी हुई है, बहुत थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन उस बारिश को भी ये अपने अंदर समो नहीं पा रहा है। मित्रों, हम जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब तपने की बारी आती है, साधना करने की बारी आती है, अपने को साधने की बारी आती है, तब हम पीछे हट जाते हैं, बहुत से तर्क वितर्क जुटाते हैं जो कुतर्क के आसपास होते हैं, तर्क तो होते ही नहीं, कुतर्क होते हैं और हम अपने डिफेंस करने लगते हैं कि नहीं ऐसा अगर होता तो मैं ऐसा कर लेता, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है इसीलिए यदि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा कोई दोष नहीं है। मित्रों, आप लोगों ने सिविल सर्विस की तैयारी करने का संकल्प लिया है, कल जब 2015 की शुरुआत होगी तो मैं चाहूंगा कि आप अपने संकल्प को बार बार दोहराएं और कहें कि मुझे बनना ही है, मुझे इसे करना ही है। और याद रखिए कि जब आप अपने को हारा हुआ मान लेंगे तो यह समाज आपको कभी जीतने नहीं देगा, कभी जीतने नहीं देगा। सबसे पहले तो आपको ही यह फैसला करना होगा कि मुझे जीतना है, मुझे बनना है, मुझे करना है। मित्रों, कल मैं आपसे अरिजीत सिंह के बारे में बात कर रहा था, मैंने बताया था कि वो जब एक फेम गुरुकुल प्रोग्राम में के कंपटीशन में अरिजीत आए थे तो उनकी जो रैंकिंग या तो तीसरी थी या चौथी थी। आपको जानकर थोड़ा और आश्चर्य होगा कि उनकी रैंकिंग न तीसरी थी न चौथी थी बल्कि छठवीं थी, छठवीं रैंकिंग थी। और उस समय के वीडियोस मैंने देखे जब वो कंपटीशन में आते थे और उस सब में, तो मैं देख करके मैं दंग रह गया कि यही अरिजीत कितने लो कॉन्फिडेंस में था और आज उसने क्या कर लिया, आज जो कितने हाई कॉन्फिडेंस में है। और जो भोपाल में जो आशिकी नाइट हुई उसमें वो कितने आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था जैसे सब कुछ अरिजीत सिंह का बदल गया हो। मित्रों, वो केवल एक मानसिक तैयारी से ये चमत्कार होते हैं। यदि आप सरेंडर कर देंगे तो कभी आप मत समझिएगा कि दुनिया आपके सामने अपने आप को सरेंडर कर देगी, कभी ऐसा नहीं होता है। दुनिया सरेंडर करने वालों की तारीफ में कभी भी इतिहास के पन्ने बर्बाद नहीं करती है, दुनिया उनको सलाम करती है जो अपने को सलाम करने के काबिल बनाते हैं। और ऐसा आपको करना है, 2015 में करना है। वक्त आपके साथ होता है, याद रखिए कि वक्त आपके साथ कभी नहीं चलेगा। आपके साथ होता है लेकिन वो आपके साथ नहीं चलेगा, आप उसके साथ चलेंगे तो वक्त आपके साथ चलने लगेगा। वो आपके लिए होता है, कभी आपका विरोधी नहीं होता है, कभी आपका दुश्मन नहीं होता है, वो जैसा है वैसा है। वक्त एक कैनवस की तरह होता है, उसमें आप जिस तरह की जो भी बातें लिखते हैं वो सारी चीजें उसमें उभर जाती हैं, उकेरी जाती हैं, और फिर वक्त उनको समाये रखता है, अपने में मौजूद रखता है, वॉश आउट नहीं करता। फिर आप उनको कितना गहरा बनाते हैं, कितना गाढ़ा बनाते हैं, यह आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि क्या फिर से आप वक्त के उस कैनवास पर कुछ और हर्फ लिख रहे हैं या आपने छोड़ दिया है। ज्यादातर लोग जब सफलता के करीब पहुंच रहे होते हैं लौट जाते हैं क्योंकि वो हार मान चुके होते हैं। दोस्तों, एक जो बहुत साहसी आदमी होता है और जो एक जो बहुत कमजोर आदमी होता है उसमें केवल कुछ ही मिनट का फर्क होता है। साहसी आदमी अंत तक लगा रहता है और जो कमजोर आदमी रहता है वो जब काम पूरा होने को होता है उससे ठीक कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले अपनी दावेदारी वापस ले लेता है। बस इतना ही फर्क होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने ही वाला था कि आपने अपने गैस चूल्हे को बंद कर दिया, उस समय पानी का जो टेम्परेचर था वो 99.9 डिग्री सेल्सियस था। थोड़ा सा अगर आपने और धैर्य रख लिया होता तो पानी उबलने लगता, आपकी जय जयकार होने लगती, आपकी मुराद पूरी हो चुकी होती, आप सफल कहलाते। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता दोस्तों सफलता और असफलता के बीच की रेखा में, बहुत झीना सा पर्दा होता है। आपको केवल आपकी आंखों में वो दृष्टि चाहिए कि आप उस पर्दे को देख सके। मित्रों, एक ऐसे समय में जब 2015 आने वाला है, 2014 खत्म हो रहा है, मुझे लगा कि वक्त को लेकर के मुझे आप लोगों से कुछ अपनी भावनाएं और अपने विचार शेयर करने चाहिए। मैंने अपनी बातें कुछ आप लोगों के सामने रखी हैं, मुझे विश्वास है कि आप मेरी इन बातों पर थोड़ा सा विचार करेंगे, भावनात्मकता के साथ भी विचार करेंगे क्योंकि कभी कभी भावना भी बड़ी प्रबल शक्ति रखती है, होता ही है प्रबल, कभी कभी की बात नहीं, बशर्ते कि आप उसे उस रूप में ले सकें। इस पर विचार करेंगे और 2015 को एक बार आप फिर से एक ऐसी ताकत में तब्दील कर देंगे जो आपकी पहचान बन जाए। मित्रों, इसी के साथ ही मैं आप सबको 2015 के उगते हुए सूरज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि यह जो सूरज निकले आसमान में, इसका प्रकाश आपको जीवन में एक विवेक बनकर रास्ता दिखाता रहे। इसकी जो ऊर्जा है वो आपकी आत्मा और आपके दिमाग की ऊर्जा बनकर लगातार आपको मजबूत बनाए रखे, और जब भी आपके दिमाग में एक निराशा का अंधेरा छाए तो यह सूरज एक तरह से रोशनी का दीपक बनकर उन अंधेरों के खिलाफ लड़ाई में आपकी मदद करे। मित्रों, सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, उसको इनवाइट कीजिए और लेट अस इनवाइट द न्यू सन ऑफ 2015 ऑल टुगेदर। हम सब मिलकर उसका आह्वान करें और आह्वान करके उसे अपने अंदर स्थापित करें। तो मित्रों, 2015 का वर्ष आप सभी के लिए बहुत मंगलकारी हो, बहुत शुभ हो और बहुत ही सफलता का सेहरा बांधने वाला हो। अपने इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज के मैं अपने इस 2014 के अंतिम ओपनिंग रिमार्क को खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि 2015 में हम सब फिर एक नई शुरुआत के साथ afeis.com की शुरुआत करेंगे। मैं बहुत बहुत आप सबका आभारी हूं। आज इतने सारे मेल मेरे पास आए हैं कि उन मेल्स को पढ़ने में मुझे 1.5 घंटे लग गए, और उस मेल में इतने सारे सजेशंस हैं कि नए afeis.com में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए। मुझे पता लगा है दोस्तों कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, आप सब किस रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतने बड़ी संख्या में आप लोगों ने मेरे इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड किया है। इसका मतलब है कि आप वाकई में afeis.com से जुड़ाव महसूस करते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये आपके अनुकूल बन सके। केवल इतना ही नहीं, बल्कि आप कहीं ना कहीं मुझसे भी जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, और आपको थोड़ा ही सही लेकिन ये विश्वास है, ये भरोसा है कि शायद मैं आप लोगों की उम्मीद को पूरा करने में कुछ मदद कर सकूं। तो इतने सारे मेल का आना इस बात का प्रमाण है। इसके लिए मैं फिर से आप सबको एक बार एकेडमी की पूरी टीम की ओर से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने जितने भी पॉइंट्स दिए हैं मित्रों, सब मैं अभी नोट कर लूंगा। नोट करने के बाद मैं देखूंगा कि उनमें से क्या क्या संभव है, क्या क्या संभव नहीं है। इस बात के लिए मैं जरूर माफी चाहूंगा कि हर एक की इच्छा पूरी नहीं की जा सकती, सारे सजेशंस तो इंक्लूड नहीं किए जा सकते, लेकिन जितने भी मैक्सिमम सजेशंस हैं किसी न किसी तरीके से इंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी और इस डायरेक्शन में की जाएगी कि वो आप लोगों के लिए उपयोगी हो सके। तो मित्रों, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर, और कल के AIR न्यूज की सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर सोचें तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी, लेकिन एक बात थी जिसकी ओर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो थी दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लेकर। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, हेल्थ, मिट्टी की हेल्थ, और कार्ड। आप भारतीय कृषि के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, लेकिन भारतीय कृषि के बारे में जानने के बिल्कुल दो अलग अलग फोरम है, कह लीजिए पैरामीटर्स हैं, स्ट्रीम है। एक तो वह जो सुनी सुनाई बात अभी तक हम जानते रहे हैं, चाहे वो कृषि का के स्वरूप के बारे में हो कि भारतीय कृषि का स्वरूप क्या है, या उनकी समस्याओं के बारे में हो कि भारतीय कृषि की क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। लेकिन इसका जो दूसरा जो फोरम है, या कह लीजिए कि जो दूसरी स्ट्रीम है, वो है एक तरह से बहुत ही लॉजिकल, तार्किक, और साथ ही साथ तार्किक तो फर्स्ट वाली भी है, लेकिन जो सेकेंड स्ट्रीम है इसकी विशेषता यह है मॉडर्निटी, कि आधुनिकता के संदर्भ में कृषि का स्वरूप क्या है और कृषि की समस्याएं क्या है। चीजें बहुत बदल गई हैं और बदलनी भी चाहिए। 1970 के आसपास की जो हमारी कृषि थी वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद वैसी ही कृषि नहीं रह गई है। 1965 के आसपास जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हिंदुस्तान में शुरू हुआ उसने भारतीय कृषि के फेस को, उसके चेहरे को बहुत जबरदस्त रूप से बदला। और दूसरा जो बदलाव का समय आया, जो माइलस्टोन आया दोस्तों, वो 1990 के बाद से आया। और जब भी मैं 1990 के बाद की बात करता हूं, आप समझ गए होंगे कि यह बदलाव क्यों आया, क्योंकि जैसे ही हमारा मार्केट, हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के मार्केट और विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ी, निश्चित रूप से कृषि के स्वरूप में भी बदलाव आना था। ऐसी स्थिति में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करें तो इन दोनों को लेकर चले। ज्यादातर मैंने स्टूडेंट्स में जो संकट देखा है वो ये देखा है कि वो फर्स्ट स्ट्रीम से तो बहुत अच्छे तरह से परिचित है, क्योंकि शुरू से वो यही पढ़ते आ रहे हैं। जो मिडिल लेवल की जो एजुकेशन हुई, हायर सेकेंडरी की एजुकेशन हुई, या जो सामान्य तौर पर अखबारों में लिखे जाते हैं, वो इसी तरह की चीजें होती हैं, तो वो मॉडर्न आउटलुक को वो मिस कर देते हैं। और जो सिविल सर्विस है वो आपके मॉडर्न आउटलुक को चाहता है। आज क्या हो रहा है, आज आप देख रहे हैं कृषि में क्या हो रहा है, इसके प्रमाण के रूप में आपको खासकर विदर्भ क्षेत्र में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं बता रही हैं कि क्या हो रहा है। और किसान जो आत्महत्याएं कर रहे हैं उसके बारे में अभी एक रिपोर्ट भी केंद्र सरकार के पास पेश की गई है, और उसमें बताया गया है कि इन सब के पीछे, आत्महत्याओं के पीछे कारण क्या है। ट्रेडिशनल कारण क्या है, वही अकाल पड़ जाना, बाढ़ आने के कारण फसलों का नष्ट हो जाना, बेवजह बरसात हो गई तो फसलों का खत्म हो जाना, ओलावृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाना, ये ट्रेडिशनल रीजंस हैं, पहले भी होते रहे हैं। लेकिन पहले का किसान आत्महत्या करने को आगे नहीं आता था, क्योंकि एक तो उस समय दोस्तों सच बात यह है कि आदमी इतना मजबूत होता था कि आत्महत्या जैसी चीजें तो बहुत इक्के दुक्के लोगों के दिमाग में आती थी। आज का आदमी, चाहे सच में बताऊं मैं कि चाहे उस पढ़ लिख करके ज्यादा ज्ञानी हो गया हो और ज्यादा उसके पास वैज्ञानिकता की चीजें आ गई हो, भौतिकता की चीजें आ गई हो, लेकिन अंदर का आदमी तो आज पहले की तुलना में बहुत ज्यादा कमजोर है, मुझे ये तो लगता है दोस्तों। उसकी सहनशीलता कम हो गई है, संघर्ष करने की शायद क्षमता कम हो गई है, भविष्य के प्रति उसकी आस्था कम हो गई हो, जो भी हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसके साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी बताया हुआ है कि आज जो आत्महत्या कर रहा है उनके कारण क्या है, वो कर्ज के बोझ से दब रहा है। और ये जो कर्ज, साहूकारों का कर्ज, उस तरह का लिया गया कर्ज नहीं है कि उसे किसी का मृत्यु भोज कराना था उसके लिए उसने कर्ज लिया था, या बेटी की शादी करनी थी उसके लिए उसने कर्ज लिया था। ये कर्ज खेती के लिए लिया गया कर्ज है, उसको खाद खरीदना था, उसको कीटनाशक दवाइयां खरीदनी थी, उसको उन्नत बीज खरीदने थे, उसको बिजली का भुगतान करना है सिंचाई के लिए, इसके लिए कर्ज उसने लिया था। और जब फसल नष्ट हुई या फसल हो भी गई तो उसे उस फसल की उतनी कीमत नहीं मिल पाई, अब वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे, तब वही समझता है कि अपने जीवन को खत्म कर दे। ये नए संकट है, किसानों पर कर्ज का बढ़ना, उसने उसकी जो पैदावार है उसकी सही कीमत न ले पाना, और सही के सही कीमत न मिल पाने के पीछे कारण होती है सरकार की अपनी नीतियां बहुत रोल प्ले करती हैं, आयात निर्यात की नीतियां सरकार की होती हैं। इस तरह के जो ढेर सारे संकट हैं वो किस एक तरह से कह लीजिए कि हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए संकट हैं। ये न्यू आउटलुक है। तो मित्रों, उसी न्यू आउटलुक से आपको जोड़कर देखना पड़ेगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी कि एक किसान की जो जमीन है, उसकी जो मिट्टी है, उसकी हेल्थ कैसी है। हेल्थ कैसी है का मतलब है कि उस मिट्टी में कौन सी फसल बोई जानी चाहिए, उस मिट्टी का चरित्र क्या है। आपको मालूम है कि हर मिट्टी में हर फसल नहीं बोई जा सकती। फिर उसकी उर्वरकता कितनी है, उसकी उर्वरकता को सही करने के लिए किस उर्वरक का किस किस मात्रा में कितना उपयोग होना चाहिए, ये सारी जानकारियां उसे उसके मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिलेंगी। इस प्रकार वो अपनी जमीन पर वैज्ञानिक तरीके से खेती कर पाएगा। मित्रों, अभी जो भारतीय कृषि में एक बहुत बड़ा संकट उभर करके आ रहा है वो आ रहा है मिट्टी में इतनी ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा है कि वो अपनी एक उसकी जो नेचुरल क्षमता है, उसकी जो स्वाभाविक क्षमता है, उपजाऊ क्षमता है, वो कम होने लगी है, खत्म होने लगी है। और एक तरह से वो जो फसलें भी पैदा हो रही हैं, क्योंकि अब उसमें कीटनाशक का उपयोग ज्यादा हो रहा है, रासायनिक खादों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है, वो पानी बहुत ज्यादा उनमें इस्तेमाल होता है। तो न्यूज में भी ये बात थी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो उपयोग किया जाएगा तो उससे दो बहुत बड़े फायदा होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि प्रयोगशाला से और खेती के बीच की जो दूरी है वो मिटेगी। हमारे वैज्ञानिक जो प्रयोगशालाओं में खेती के बारे में प्रयोग कर रहे हैं वो खेती तक पहुंच सकेंगे, उनका व्यावहारिक उपयोग हो सकेगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि जो जमीन है उसमें किस उर्वरक का कितना उपयोग किया जाए वो सही कंटेंट में डल सकेगा, और दूसरा फिर जल का भी समुचित उपयोग हो सकेगा। तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो न्यूज थी, मैं समझता हूं कि सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, पहले से भी चल रही है, और ये आपके कृषि के क्षेत्र को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उपयोगी है, और ये आपके ध्यान में होनी चाहिए। अभी तो दो तीन और छोटी छोटी खबरें थी, बस चलता हूं मैं, आपका केवल ध्यान उधर दिला रहा हूं कि जब आप न्यूज सुनेंगे तो किन चीजों को आपको फिर न्यूज खत्म होने के बाद अपने दिमाग में एक तरीके से रिपीट कर लेना चाहिए। एयर एशिया का विमान जो गायब हुआ था उसका मलबा मिल गया है और उसमें शव भी मिल गए हैं, एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक जो घटना घटी थी, एक खबर सी है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक खबर है, आप चाहें तो एक बार दिमाग में ला सकते हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हां, वीजी वर्गीज जी का जो निधन हुआ है वो एक बहुत हिंदुस्तान की बहुत एक मानी हुई पर्सनालिटी थी, वीजी वर्गीज जो बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट माने जाते थे, उनका निधन हुआ है। तो छोटा सा नोट आपको मालूम होना चाहिए, और खासकर स्टेट सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मायने रखता है। फिर आपने देखा कि जो फिल्म आई है पीके, उसको लेकर के एक तरह से हंगामा सा मचा हुआ है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग धर्म के आस्था के विरुद्ध मान रहे हैं, खासकर हिंदू धर्म के विरोध में मान रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रही हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, सिनेमा थिएटर्स को, सिनेमा हॉल को धमकियां दी जा रही हैं, कहीं कहीं तो प्रदर्शन बंद भी हो रहा है। तो इस तरह की घटनाओं को लेकर के जो सरकार ने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट था कि सरकार ने कहा है कि चूंकि सेंसर बोर्ड ने यह फिल्म पारित की है तो इसीलिए सरकार का अब इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो खासकर पीके फिल्म है इसको लेकर के एक तरह से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर आप बात कर सकते हैं, रचनात्मक स्वतंत्रता है उस पर भी बात हो सकती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो इसको आप एक केवल एक तथ्य के रूप में, आप एक एग्जाम्पल के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आगे देखते हैं कि ये जो अभी एक तूफान सा आया हुआ है, एक जलजला सा आया हुआ है, ये क्या रूप लेता है, लेट अस सी। तो मित्रों, एआईआर न्यूज के बारे में बस इतना ही, अब मैं आता हूं अखबार की क्लिपिंग्स पर। दोस्तों, आज अखबारों में भी कोई बहुत ज्यादा क्लिपिंग्स नहीं मिली हैं, शायद अखबार भी अब नए साल को विदाई देने की तैयारी में है। एक जनसत्ता में एडिटोरियल कमेंट है मुसीबत की खेती को लेकर के, ये मैं डाल रहा हूं, ये आप देख लीजिएगा, इसकी कुछ चर्चा मैं कर भी चुका हूं। एक दैनिक जागरण में छोटा सा ब्लॉग छपा है, वो सोशल मीडिया और धारा 66A को लेकर के, जो आईटी का जो एक्ट है 66A, और इसको लेकर के पिछले दो सालों से लगातार मेन्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मैं डाल रहा हूं, लेकिन बहुत ही सामान्य सा लेख है, आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दी हैं। इसको मैं सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रहा हूं कि ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि ब्लॉग बेकार है, प्लीज उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अखबार में जो चीजें छपती हैं वो सारे तथ्यों को ध्यान में रख करके छपती हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा कमेंट है जग सुरैया जी का, और वो लिखा हुआ है कि खासकर घर वापसी का जो कुछ धार्मिक जो संगठन है वो धर्मांतरण के पक्ष में जो अपनी बात कह रहे हैं और इसे घर वापसी का नाम दे रहे हैं, उसको लेकर के एक कमेंट जग सुरैया जी का है। उन्होंने लिखा है कि घर वापसी की बात तो ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम किसी को घर में वापस बुला रहे हैं, अपने घर को ठीक करना चाहिए। और इसमें इन्होंने दो तथ्य उठाए हैं कि खासकर भारत के जो आदिवासी जो जनजातियां हैं वो और दलित, इन लोगों ने ही धर्मांतरण अभी तक किए हैं, और निश्चित रूप से चूंकि वो मेन स्ट्रीम में, हिंदू धर्म के मेन स्ट्रीम में अपने को महसूस नहीं करते थे, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया है, इसको लेकर के उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, ये आप देख लीजिएगा। दो आर्टिकल हैं फ्रेंड्स इकोनॉमिक टाइम्स का, एक आर्टिकल है खासकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगातार सरकार कह रही है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे, लेकिन आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर रहा है, तो उसको लेकर के इन्होंने आर्टिकल लिखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का सच पूछिए तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, कुछ सीमा तक होता है, लेकिन वही सब कुछ नहीं होता है। और इसमें इन्होंने भारतीय संदर्भ में जो एक अच्छी बात उठाई है वो है कि भारत में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो करता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट और मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। तो एक अच्छा आउटलुक, मुझे एक नई दृष्टि लगी, तो ये आर्टिकल आपको अवेलेबल रहेगा। और दूसरा जो आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का है वो जीएसटी को लेकर के है। सिविल सर्विस की दृष्टि से तो मैं नहीं कहूंगा कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा है, लेकिन जीएसटी पर आपकी पकड़ बन सके इस दृष्टि से ये लेख ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चंस उस रूप में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो खासकर जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए शायद ये ज्यादा उपयोगी हो सकता है। और अगर आपको भी इंटरेस्ट हो तो आप इसे देख सकते हैं। मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सबसे पहले मैं अपने उन दोस्तों को धन्यवाद दे दूं। आज तो दोस्तों बहुत मेल है, तो उस मेल में जिन्होंने सजेशंस दिए हैं वो मैंने अलग से ले लिए रख लिए हैं। उनके नाम मैं अगर दोहराऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, तो मैं उन्हें सामूहिक रूप से धन्यवाद देता हूं सजेशंस के लिए। कुछ ने ऑडियो गाइडेंस के अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर के बातें की हैं। उनमें है अतुल शर्मा, जयपाल सिंह, बी एम गौतम और विशाल कदम औरंगाबाद से, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मित्रों, एक साजिद जी का मेल है दिल्ली से। साजिद जी, आपने इस afis.com की प्रशंसा करते हुए अपना सहयोग देने के लिए का ऑफर दिया है, मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सीबीआई में डीएसपी होते हुए भी और इसके लिए वक्त निकालने को तैयार हैं। मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है, डेफिनेटली जब भी ऐसी जरूरत होगी तो मैं निश्चित रूप से आपको आमंत्रित करूंगा। और मेरा आमंत्रण आप स्वीकार करें कि आप जब भी किसी वजह से आपका अगर भोपाल आना हो तो प्लीज मुझे सूचित करें, निश्चित रूप से आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी होगी। मित्रों, एक जो मेल है वो तेजिंदर जी का है, और तेजिंदर आपने लिखा कि आप पंजाब शिफ्ट करने वाले हैं। कल मैंने आपके बारे में थोड़ी सी बात की थी, तो आपको और आपकी माताजी को नमस्कार। देखिए, मैं एक बात आपके संदर्भ में विशेष रूप से करना चाहूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल्ली में है रहते एक अलग बात थी, आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है, आप पंजाब जा रहे हैं वो एक दूसरी अलग बात है, लेकिन जो सफलताएं हैं वो किसी की मोहताज नहीं होती हैं। आप अपना हौसला बनाए रखिए, कर्म पर विश्वास रखिए और इस बात पर भी विश्वास रखिए कि कोई एक ऐसी शक्ति होगी जो निरंतर आपकी मदद करती रहेगी। हां, आप अपना रिसीवर ठीक रखिएगा, आपकी भावनाएं पवित्र हों, इच्छाएं पवित्र हों, हृदय निर्मल हो, ताकि वो जो आपकी मदद करने वाली शक्तियां हैं वो जो शक्ति आपको भेजेंगी उसे आप ग्रहण कर सके। आप अपना हौसला बनाए रखिए, लगातार अपने काम में लगे रहिए, सफलता आपको मिलेगी ही, क्योंकि सफलता ऐसे ही लोगों की प्रतीक्षा करती रहती है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मेरा ऑडियो गाइडेंस आपके साथ है, और भी यदि आपको कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ है। मित्रों, कुछ और भी प्रश्न हैं, जैसे कि एमपीपीएससी में बहुत से स्टूडेंट प्री में सेलेक्ट हो गए हैं, मेंस के एग्जाम के बीच में ही यहां की क्लासेस होनी है एकेडमी की, उसमें उनको 2-3 दिन का फर्क पड़ रहा है। उन्होंने जानना चाहा है कि क्या ये क्लासेस 2 दिन पहले लग सकती हैं, 10 मार्च से शुरू होने वाली हैं, तो उनका शायद कहना यह होगा कि क्या 7 या 8 मार्च से ये शुरू हो सकती हैं। तो मैं उन दोस्तों से कहना चाहूंगा कि इसको प्रीपोन करना तो हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं उसी तरीके से होती हैं, दूसरे स्टूडेंट्स भी उसी तरह से प्लान करते हैं, बहुत से लोग सर्विस में होते हैं उसी तरह से अप्लाई करते हैं, तो उससे सारा कुछ एक तरह से उलटफेर हो जाएगा। तो अफसोस है कि मैं उनकी इस शिक्षा के अनुकूल ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। अब वो देखें कि वो इसको कैसे मैनेज कर पाते हैं, इसके बारे में हम लोग फिर बाद में बात कर सकते हैं, और जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उससे आप पर्सनली भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने पूछा है कि ये जो आप आईएएस कैसे बनेंगे, किताब उन्हें कैसे मिल सकती है, तो देखिए ये फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, amazon.com पर भी अवेलेबल है, ऑनलाइन आप वहां मंगा सकते हैं, आपको तुरंत वो किताब मिल जाएगी और मार्केट में तो अवेलेबल है ही। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं एक सूचना के और आपको देना चाहूंगा, वो ये है कि कल नया साल है, 1 जनवरी 2015 की तिथि होगी, और मेरी ये इच्छा है, मेरा ये निर्णय है, बहुत सोच समझ करके मैंने निर्णय लिया है कि इस 1 जनवरी 2015 के दिन पूरा दिन आप अपने साथ रहें, और अपनों के साथ रहें, उसमें मेरी घुसपैठ न हो। यह निर्णय मैंने बहुत सोच समझ करके लिया है, बहुत द्वंद्व के बाद लिया है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मेरी उपस्थिति हो नहीं हो, ऑडियो गाइडेंस में डालूं नहीं डालूं, और अंततः मैंने यह निर्णय लिया कि नहीं, मेरी उपस्थिति वहां एक बाधक के रूप में ही होगी, डाइवर्शन के रूप में भी होगी। 1 जनवरी का जो आपका रिदम होगा, जो लय और ताल होगी, उसमें वो कहीं ना कहीं एक बाधा ही उत्पन्न करेगी और 1 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, कल ऑडियो गाइडेंस अवेलेबल नहीं रहेगा, पढ़ने के लिए कोई आर्टिकल भी मैं कल के अपने afis.com पर नहीं डालने जा रहा हूं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कल आप पूरी तरह से अपने साथ रहें, अपनों के साथ रहें, और परसों यानी कि 2 जनवरी 2015 को नए वर्ष के दूसरे दिन मैं आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा, आप लोगों से फिर बातचीत होगी और ढेर सारी बातें करते हुए हम देखते हैं कि नए साल में अपने afis.com को हम क्या नया रूप दे सकते हैं। आप लोगों ने सजेशन दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नया वर्ष आप सबके लिए बहुत अधिक मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, शुभ हो। इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपनी पत्नी की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, और सच पूछे तो अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, पुराने वर्ष की विदाई, परसों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा चाहूंगा एक बार फिर से 2014 का ये अंतिम नमस्कार स्वीकार करें।